نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے عبودیت اور اس کا عملی اظہار اقیم الصلاۃ للذکر میری یاد کے لیے نماز ادا کریں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت 162 ایک ایمان والے کی زندگی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان پہلے یہ تو دیکھے کہ میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا اور مجھے کدھر جانا ہے۔ جتنا آپ کو ان تین سوالوں کا جواب ملے گا اتنا ہی زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کریں گے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت عمل جو اللہ کی نگاہوں میں بندے بھی خوبصورت بناتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ نماز ہے۔ نماز ہمیں مکمل بناتی ہے اور دنیا اور اس میں جو کچھ ہے نماز ان سب سے بہتر ہے۔ امیجن تو کیجئے کیا کچھ ہے دنیا میں، آپ کے میرے من میں رہتی ہوئی چیزیں، ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہوئی چیزیں، ہماری پوری زندگی، جن چیزوں کو پانے کی چاہت میں ہم جیتے ہیں، جن چیزوں کے جانے سے ہم روتے ہیں، جن چیزوں کے چلے جانے کے اندیشوں سے ہماری زندگیاں پریشانیوں کی ایک تصویر بنی دکھتی ہیں، ان سب کو ایک پلڑے میں ڈالیے اور دوسرے میں ڈالیے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز اور نماز۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے جو الفاظ تھے امت کے لیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، انہی کو دیکھا کرو ان دونوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بہترین مواقع دیے، اس دنیا میں خوشیوں کی صورت میں بھی اور غمیوں کی صورت میں بھی، تنہائیوں کی صورت میں بھی اور شہنائیوں کی صورت میں بھی۔ کتنے ہی مواقع صبر کے آئے ہماری زندگی میں آج تک، تاکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگ لو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور کتنے ہی مواقع ہماری زندگی میں خوشیوں کے آئے کہ ان خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کر لو، تاکہ تمہاری خوشیوں پہ مہر لگ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارے شکرانے، سارے نذرانے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ جس بندے کو اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ آ گئی، اس کے بعد پھر آپ اس سے ایک چیز نہیں چھین سکتے، اور وہ خوشی ہے۔ ایک انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے اتنا زیادہ وہ خوش رہتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ کانٹینٹ، مطمئن، سیچوریٹڈ فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نوازشیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے وہ مواقع تو ڈھونڈیے کہ جب ایسا لگا کہ بس شکر کا پیالہ بھرا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو بن کے ٹپکا۔ کبھی آپ نے، میں نے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون ہے جو پیچھے چھپا ہے، میری آپ کی زندگی کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا میں اگر ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ کسی فلاں کے ساتھ ہماری خوشی بندھی ہوئی ہے، یا کسی فلاں کے پاس ہے کوئی ریموٹ ہمیں کچھ دینے کا، यकीन करें, केक लेके पहुंच जाते हैं ऐसे अफसरों के घरों में लोग ईद के नाम पे, और मुबारकबादें और गाड़ियां ऑफर होंगी, यानी झुकते ही जाते हैं, झुकते ही जाते हैं, झुकते ही जाते हैं। जिंदगी में ऐसा फिर उन लोगों के साथ मामला होता है, ऐसे नजरें लगती हैं उनके ऊपर कि दिल चाहता है कि बस वो हमसे राजी रहे। आप ये सारे मोहब्बत भरे जज्बात उस हस्ती के लिए अपनी जिंदगी में लाएं जिसकी आपको जरूरत है। लिखिए, अल्लाह की मुझे जरूरत है, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह मेरी तकमील है, अल्लाह की जात, अल्लाह की हस्ती, इससे बेन्याज मैं रह नहीं सकती। तो जरा सोचिए फिर उसके आगे न्याजमंदियां कितनी होंगी, फिर उसके आगे मेरा आपका झुकना कैसा होगा, फिर उसके आगे आपका मेरा जीना मरना और आपकी मेरी जिंदगी की किताबें कैसे खुलेंगी। तो नमाज से पहले जिंदगियों पे गौर कीजिए। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु। मैं इसी का हुक्म दिया गया हूं। अगर जिंदगी में इंसान अल्लाह ताला की तरफ नजरें लगा ले और फिर उसको ये पता चल जाए कि मेरा रब मुझे क्या क्या देना चाहता है और मेरी क्या क्या जरूरतें हैं। यहां बैठे बैठे जरा सा सोचे, आपकी मेरी क्या जरूरतें हैं? हम छोटे से लोग हैं, हमारी जरूरतें भी छोटी छोटी हैं। हम कमजोर से लोग हैं, हम कमजोर सी चीजें पा पा के खुश होने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको मुझे अगर जिंदगी में कोई खैर का ऐसा मामला दिया जिससे हम खुश हैं तो बड़ी खुशबख्ती की बात है, खुश होना भी चाहिए हमें। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर अल्लाह सुभान ताला हमारा साथ छोड़ दे, चले जाओ, जैसे कभी कभी गुस्से में माँ भी कहती है ना, चले जाओ, शक्ल ना दिखाओ, मुझे बात ना करना, मेरे सामने ना आना, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। कभी ना कभी जिंदगी में माँ ने डांटा होगा ना, माँ तो कह ही दे, जो कह दे, जो बाप कह दे, बाप घूर के देख ले तो हमारी जान नहीं निकल जाती। अब आप जरा सपने ऊपर ले, आपका रब आपको कहता है चले जाओ इधर से, मुझे तुम्हारी नमाजें बिल्कुल नहीं कबूल, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत ही नहीं, और जिधर जिंदगियां गुजार रहे हो ना उधर ही मौत आएगी तुम्हें। आप सोचिए, ऐसे नहीं लग रहा सहरा में खड़े कर दिए गए, खिजां रसीदा पत्ते की तरह बंदा लरस के रह जाए जब रब्बुल आलमीन के दरबार से थतकार दिया जाए। तो कुल इन्न सलाती व नुसुकी व माहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिछ जाइए अपने रब के आगे, बच्चा माँ से जैसे बात मनवाता है उसको जहन में लाए, पाँव भी मारता है, हाथों से इशारे भी करता है, आंखों से टुप 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 आंसू भी हैं, और जब देखता है कि माँ नहीं मान रही ना, आज मूड नहीं है माँ का मानने का, तो एक कोने में जाके दुबक के बैठ जाता है कि चलो मेरे शोर करने पे माँ को तरस नहीं आया ना, तो शायद मेरी खामोशी पे तरस आएगा। तो जब आपका मेरा जीना और आपका मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह को हमसे भी मोहब्बत होने लगती है। जिंदगी की मिराज, अगर आप इस आयत पे अभी तक नजरें जमाए हुए हैं ना, तो आप देखिए चार चीजों में, सबसे पहले सलात, फिर नुसुक, फिर माहया, फिर ममाती। नमाज से बात शुरू हुई और मौत के अल्लाह के रास्ते पे आने पे पूरी हो गई। ये है मेरी जिंदगी का मकसद, तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस दर्जे पे आ जाइए फिर आपकी टूटी फूटी भी कबूल है, फिर आपके छोटे मोटे सदकात भी कबूल है, फिर बहुत सारी कमी पेशियां वो मालिक दरगुजर करेगा, क्योंकि उसको ये पता कि ये मेरा बंदा है और मैंने अपने बंदे को रुसवा नहीं करना, मैंने अपने बंदे को जाया नहीं होने देना। अगर आपकी नजरें फिर अल्लाह पे लगती है ना, तो अल्लाह की नजरें भी आप पे ही लगती है। बड़ा मुख्तात सा एक जुमला सुन लीजिए, अगर हमारा रब के सिवा कोई नहीं है ना, तो रब का भी फिर हमारे सिवा कोई नहीं है। बेशक सब कुछ उसी का है, लेकिन हकीकत में जो रब का है वो ईमान वाला है। ईमान एक इतनी खूबसूरत चीज है कि जो अल्लाह के और बंदे के बीच में एक ना नजर आने वाला तार जोड़ देती है। फिर बस वही बात है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आज दिल तो है बात करने को नमाज के मौजू पे, लेकिन नमाज तो एक खोखला ढांचा रह जाती है अगर उसमें अबूदियत की रूह न हो, अगर उसमें अबदियत न हो। तो अल्लाह ताला के लिए बात करने से पहले, नमाज और दुआ पे गुफ्तगू करने से पहले, आइए इबादत के फलसफे और उसकी असल को समझें, यानी इबादा क्या है और आजजी क्या है, क्योंकि ये दो रूहें हैं नमाज की। जब तक आपके मेरे अंदर अबूदियत के जज्बे नहीं होंगे, आजजी नहीं होगी। और इसी का एक जुमला सूरत फातिहा में हर दिन रात हम पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि इय्याक नअबुदु वइय्याक नस्तईन, ये लाजिम है। इबादत को समझना पड़ेगा, इसलिए कि इबादत सिर्फ चंद रिचुअल्स का नाम नहीं, मोड ऑफ वर्शिप नहीं है, ये एक जिंदा ताल्लुक है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पहला सवाल खुद से लिखिए, हम इबादत क्यों करें? अपने लफ्जों में लिख लें, मैं नमाज क्यों पढूं? आपके बच्चे भी कहते होंगे, मामा आप क्यों मुझे मजबूर करती हैं, मैं क्यों नमाज पढूं? ये सवाल फितरी है। अल्लाह ने इंसान का जो इंटेलेक्ट बनाया है, जो दिमाग बनाया है, उसके अंदर ये सवाल आता है। और इस सवाल का आ जाना कोई गुनाह नहीं है, ये कोई एथिज्म नहीं हो गया, तौबा तौबा माफ करो, माफी मांगो, ये नहीं कह सकते। हाँ, इसका भरपूर जवाब दे खुद को भी, क्योंकि कुरान कहता है सूरह ज़ारियात 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। आप देखिए कि इस वक्त हम एक अच्छी बात सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ये भी इबादत है। दर्स देना और दर्स लेना भी इबादत है। कोई आपसे मुझसे सवाल पूछता है, आप दर्स क्यों देती हैं? और कोई आपसे पूछते कि आप क्यों सब छोड़ छाड़ के बैठ गई आके कागज कलम लेकर, तो आपके वजह इसका जवाब होना चाहिए। क्यों? कि बगैर किसी मतलूब के पाए कोई काम किया नहीं जाता। किसी भी चीज की तलब दिल में रखे बगैर कोई काम करना ना समझी की बात है। आप बाजार जाते हैं तो दिल में कुछ चीजें लेके जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से नमाज तो पढ़ी रहे हैं, पर उससे लेना क्या? दर्स तो दे रही हूँ, क्या लेना मैंने इससे? मैं दर्स सुन रही हूँ, कितने सालों से सुन रही हूँ, क्या मुझे इसे लेना क्या है? तो ये सवाल जहन में आना चाहिए। तो याद रखिए कि लफ्ज़ अबूदियत इबादतुन ऐन बादाल से है। जिल्ला का लफ्ज़ अगर आप लिखें ना, जिल्लत जलूल ला जलूला सूरह बकरा में भी आता है, तो उसका ये ऑपोजिट है। यदि लफ्ज इबादत की मैंने कम अज कम कोई 10 तारीफें लिखाई थी, या का नाबुदो या का नस्तईन में इबादत की, एक दो आपको बोल देती हूँ अभी, शायद आपको फायदा हो। कमाल अल हुब, मोहब्बत का कमाल, और कमाल अल जुल, ह्यूमिलिएशन, बीइंग हम्बल होने की भी इंतहा। यानी लफ्ज इबादत में दो जज्बे हमेशा छुपे होंगे, अल्लाह की मोहब्बत की भी इंतहा होगी और खौफ भी होगा। मोहब्बत किस बात की? कि हस्ती बहुत बड़ी है, उसको मैं चाहने जा रही हूं, पता नहीं वो मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे, यानी खौफ ऑफ रिजेक्शन। देखिए आप इसको समझिए, कोई बहुत ही नफीस इंसान आपके पास आता है, बहुत वेल नोन, किसी भी दीन दुनिया सियासी किसी रंग में कुछ भी कह ले, यानी ऐसी पर्सनैलिटी के जिसके लिए लोग मरते हो कि अल्लाह हमें उन जैसा बना दे। आप कहती हैं कि मैं कोई गिफ्ट दे दूं? अब आप अपनी सी पूरी कोशिश करके अपने घर में देखेंगी क्या है, किधर है, कहाँ से लूं, जो आपको दी बेस्ट लगेगा ना, आप वो निकालेंगी और उसको पैक करेंगी। लेकिन घर से निकलकर उस तक पहुंचने तक और उसको देने तक दिल की क्या कैफियत होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अच्छी चीज है, नहीं पसंद नहीं आएगी उनको, नहीं मुझे तो शर्म आती, फिर नहीं देती, इससे तो बेहतर नहीं देती। जब तक आप या तो दे नहीं देते, और जब तक कि आप दे ही नहीं सकते, वो कहते हैं हम लेंगे ही नहीं कुछ भी। आपकी दिल की जो कैफियत है ना, ये है अबूदिया, अगर आप इसको अल्लाह ताला के लिए डाल दें। आज सुबह उठ के फजर पड़ी ना, उसको एक गिफ्ट समझिए। आप फजर की नमाज का गिफ्ट लेकर अल्लाह के सामने खड़ी हुई और मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे। खशियत इतनी दिल पे कांप रहा है, दिल रोंगटे खड़े हो गए। अभी एक आवाज आ जानी है, किस मुंह से खड़ी हुई हो, क्या किया था कल रात को, किधर गई थी कल, वो क्या देख रही थी तुम, वो क्या सुन रही थी, वो किसकी बातें मजे मजे से कर रही थी अपनी दोस्त के साथ। बस इन्हीं कैफियत के साथ ही जो आपकी आंखों के अंदर से एक गुदास निकलता है और आपके आंसू निकलते और आप रोई पड़ती हैं कि अल्लाह मैं क्या करूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अखीर फिर आप अपना वो सारा जुर्म और अपनी कमियां बेशियां सोचती हैं ना, जो भी दिमाग में चल रही थी, तो फिर आपकी जुबान पे एक बड़ी प्यारी सी दुआ आ जाती है, ए मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, आइंदा नहीं करूंगी अल्लाह जी। वो समय हस्बैंड है ना, बस कभी कभी मैं उनके आगे मजबूर हो जाती हूँ। अल्लाह वो जो फुला मेरी दोस्त है ना, जब मेरे पास आके बैठती है मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं ऐसे बोलने लग जाती हूँ, बेकार बातें बोलती रहती हूँ। अब केयरफुल रहूंगी, बस अल्लाह जी आप मुझे माफ कर दीजिए। बस अल्लाह कहाँ, अल्लाह ताला तो इससे बहुत पहले माफ कर चुका था, आपको बाद में पता चलता है जब आप आमीन कहते हैं। तो इबादत क्या है कि आप अल्लाह ताला की बड़ाई को महसूस करें और अपने आप को छोटा देखें। अल्लाह सुब्हान ताला के सामने आजजी की आला तरीन शक्ल बना के खड़े हो जाए खुद को और अल्लाह ताला के सामने अपनी कमजोरी का इजहार करें। ये भी नोट कीजिएगा, हमें नमाज के लिए क्यों खड़ा किया जाता है। अब देखिए आज के हालात की मिसाल ले लीजिए। चलिए वही मुझे तो आया दुआ याद आती है कि ए मालिक मुझे तो सब कुछ ही चाहिए, वलम अकुम भी दुआ का रब्बी शकिया, लेकिन मेरे मालिक कैफियत ये है कि क्या मांगू और क्या ना मांगू, गुम गुम हूँ। रब्बी नी लिमान सलता इलैया मिन खैरिन फकीर। मूसा ने मदियन में कुएं की दीवार को टेक लगा के जो दुआ मांगी थी ना कि अल्लाह जाऊं किधर, घर ही नहीं है, खाऊं क्या खाना ही नहीं है, किसका साथ चाहूं कोई रिश्ता ही नहीं है इधर, अपना काम क्या करूं जॉब ही नहीं है, यानी रोटी कपड़ा और मकान के लाले पड़े में। तो लिहाजा इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। आज जरा आप जोहर की नमाज में फकीर का भेस बदलिएगा और मालिक को जाकर कह दीजिएगा एहला फकीर नी तेरे दर पे खड़ी है भीख डाल दे, एहला अपनी रहमत मेरी झोली में भर दे, एहला शिफा भर दे, सेहत भर दे, तन्हाई दूर कर दे, ए मेरे मालिक जुदाइयां दूर कर दे, ए मालिक वो चीजें जिनको कभी हमने नेमत ही नहीं समझा था, धड़ धड़ाते फिरते थे सारा दिन, मुंह से बोलते थे मसरूफ बड़े हैं, गंद बड़ा बच्चे डालते हैं, हर वक्त मेहमान है, चाय बनाऊं ये करूं वो करूं, ए अल्लाह वो तो जिंदगी थी जिसको हमने शिकवों का नजर कर दिया हर वक्त, एक तो मियाँ की चाय ही नहीं खत्म होती, इनकी फरमाइश ही नहीं पूरी होती, लो फला फिर आ गए अब खाना बनेगा, हाय फिर घर गंदा होगा, हाय फिर कल आधा दिन लग जाएगा घर साफ करते हुए, ये तो जिंदगी थी। यानी आप एक एक कैफियत जो आपकी मेरी जिंदगी की खुशी थी और जिसको कभी खुशी समझा ही नहीं, शिकवे ही शिकवे थे दिलों में, अल्लाह कहता लाओ बनो अल्लाह के सामने आओ कमजोरियों के इजहार करो। और माएँ कहती हैं कि बच्चे मिलने नहीं आते, ऐसे लगता है मैं टच कर दिया तो दोनों और बीमार हो जाएंगे। ठीक है बुरी बात नहीं है, आपको जिस तरह सोचने को कहा गया आप जरूर सोचिए, लेकिन दिल का क्या करें, तो आप अल्लाह के सामने अपनी कमजोरियों का इजहार करें। ए अल्लाह तू बादशाह और मैं मंगती, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाहि वल्लाहु वल गनीयुल हमीद, सूरत फातिर की आयत है। ए अल्लाह हम सारे ही फकीर हैं और तू बादशाह गनी है, बेनियाज है, तारीफे किया हुआ है। ये होती है इबादत, दिन में कुछ देर भेस बदलिए। और जब आप 5 दफा दिन में कोई एक्ट करेंगे ना, नहीं भी दिल मानता ना फिर भी कीजिए, आप देखिएगा कि फिर अगले दिन आपका दिल मानने लग जाएगा। कहते हैं ना कि बेहतरीन अदाकार वो है जो बिल्कुल हकीकत का रंग भर दे, ऐसे नहीं लगे कि आप कोई एक्ट देख रहे हैं, ऐसे लगे कि ये रियलिटी है। तो सूरत में आप रंग भरते जाएंगे, एक दिन दो दिन तीन दिन, फीकी फीकी बातें, फीकी फीकी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीमान की हो गई, ये तो हमने सारी जिंदगी में पढ़ी थी। पता क्या चला कि ये तो फीकी सूरत फातिहा थी। जैसे चाय के अंदर चीनी ना हो तो वो गर्म पानी है, जितना मर्जी पी लीजिए। तो फिर क्या समझ आई, अपनी कमजोरियां बयान करें, टूटी पड़े, आपके सीने में से हंडिया के खोलने की आवाजें आए, थक थक दिल दे, लर्जे कांपे, आपको इस सांस ही खत्म हो जाए कि मैं तो कब से खड़ी हूं। बाद में देखा तो पांव सूजे में। कभी कभी आप तवील सफर से जब वापस आते हैं तो अगले दिन आप कहते हैं ये जूता क्यों नहीं बुरा रहा, फिर ओहो पांव सूजे में है। 8-10 घंटे जब पांव लटकाने पड़े तो पांव सूज गए, लेकिन जहाज में नहीं है सांस हुआ, क्योंकि खुशी बहुत थी कि हम जा रहे हैं अपनों के पास, मिलेंगे, मोहब्बतों के इजहार होंगे। तो नमाज में खड़े होकर अल्लाह से मोहब्बत भरी बातें करने में इतना लुत्फ, इतनी लज्जत, आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आपके तो पांव सूज गए। अल्लाह के नबी के पांव सूज जाते थे ना, तो इसके पीछे बेखुदी थी। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये लज्जत आशनाई है इबादत। लज्जत किसको कहते हैं, लजीज, और आशनाई मोहब्बत। सच बताऊं अभी तक वो आशनाई महसूस ही नहीं हुई है। फिर नमाज पढ़ी, ये मौलवी साहब फिर बोल गए, सर्दियों में बस अभी एक नमाज नहीं पढ़ी तो दूसरी शुरू, और गर्मियों में हाय 12 बजे 1 बजे तक जागो ईशा पढ़ने के लिए, क्या मसला। ऐसे ही पढ़े मौलवी साहब, आप बताएं जरा जल्दी पढ़ लिया करें, ये रोजा हम जल्दी से रख के खोल लिया करें असर तक। ये बातें नहीं फिर होती, ये सजती नहीं है बातें, आपको तो पता ही नहीं चलता, आप तो मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह सुब्हान तआला। और सबसे बढ़ के क्यों करूं इबादत, अल्लाह ने जो कह दिया कि तमाम खिलकत इंसान और जिन की पैदाइश का वाहिद मकसद क्या, लियाबुदून, आपका मेरा मकसद हयात बींग अ ह्यूमन इबादत है, और बींग अ मुस्लिम दावा है, दावत इलाल्लाह वदो इलाल्लाह। अब आप और मैं खुद देख लें कि हम दोनों किस तरीके से इन दोनों पे अमल करते हैं, क्या वाकई हमारी कैफियत ऐसी है, हम इबादत जो कर रहे हैं ये करते हैं तो क्या ये उस दर्जे की है। तो खुलासा कर देती हूँ अभी तक की बात का कि नमाज इबादत का एक अमली नमूना है। और याद रखिए कि अल्लाह ने सारे रसूल जो दुनिया में भेजे ना, उनको भेजने का भी यही मकसद था। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، और हमने हर उम्मत के पास जो रसूल भेजा ना, उसका मकसद ये था कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। और याद रखिए कि فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، अल्लाह तुमसे बेनियाज है, उसको तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, वो तुम्हारी इबादत करने से बड़ा नहीं होगा और तुम्हारी इबादत ना करने से छोटा नहीं होगा, अल्लाह बेनियाज है। तो फिर अगला सवाल लिखिए अपने लिए, इबादत की तजीहात क्या है। तो सबसे पहली बात, अल्लाह की अजमत का एहसास। आज के बाद आपने चाहे तो फजर पढ़ी, तो चाहे असर पढ़ी, तो जोहर या मगरिब ईशा, आपने इन चार चीजों पर गौर करना है जो मैं आपको बताने लगी हूं, कि मैंने अल्लाह की अजमत को महसूस करना है। वैसे तो औरत के लिए घर के कोने में पड़ी हुई नमाज आसन है, हदीस मौजूद है, लेकिन कभी कभार, और घर का कोई एक ऐसा कोना भी तो होगा ना जहाँ कोई ना हो, आपकी बालकनी, बैकयार्ड, कोई ऐसी खिड़की कि जिसमें से आसमान दिखता हो। आज अगर आप मेरी इस टिप पे अमल करने की नीयत कर ले और जिस दिन भी मौका मिले उस दिन करें, तो आप दुआएं देंगे। बंद कमरों में शेंगलियर, थिक कर्टन्स, सॉफ्ट कारपेट, मखमली जा नमाजें अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं होने देती। हाय हज पे गई, उम्रे पे गई, कितना खूबसूरत जाय नमाज ले आई हूँ, अब फुला 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 आएगा ना, तो बहाने से उसको ये जायनमाज दूंगी ताकि फिर वो मेरी तारीफों के गुण गाए। कहाँ से लिए? चॉइस बड़ी प्यारी है आपकी भाई, महंगा तो बहुत होगा। अच्छा ये पर्दे ये कहाँ से लिए? कलर कॉम्बिनेशन देखा सर आपने? एक वॉल किस रंग की है, तो फिर वो अंदर छोटे छोटे फूल है ना जो पर्दों में, ये मैंने इससे मैच किए। मैं इंटीरियर डिजाइनर्स के पास जाती आती हूँ, वैसे मेरा टेस्ट अपना भी बहुत ही अच्छा है। याद रखिएगा, ये आप अपनी ही अजमतों के गुण गाते रहते हैं। आज के बाद आपने इबादत करनी है अल्लाह की अजमत के एहसास को बढ़ाने के लिए। और ये कब होती है? खुले आसमान के नीचे थोड़ी थोड़ी हवा मुंह पे लग रही हो, कुछ अन कतरे बूंदा बांदी की सूरत में भी आपके ऊपर गिर जाए तो कोई मजायका नहीं, और जरा सी तेज हवा चले तो पत्तों के सरसराने की आवाज है। आप एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे कि अल्लाह की अजमत का एहसास आपके दिल को दबा देगा। खुली जगहों पे पड़े, और खास तौर पे फजर, मगरिब और ईशा, खुली फिजा में नमाज पढ़े, अजमत का एहसास। और फिर आपको सोचने का भी तरीका बताऊं कि नमाज में तो जाहिर बात है मैं नमाज ही भूल जाएगी अगर हम सोचों में पढ़ जाएंगे तो, लेकिन नमाज के बाद वहां बैठिए, फिर आसमान को देखिए, कभी जमीन को देखिए, सामने कोई दरख्त है उसको देखिए, अल्लाह जी ये आपने कैसे बनाया, अल्लाह ताला आपको कैसे ख्याल आया था, अल्लाह ताला आपने ये दुनिया कैसे बनाई थी। यानी इस तरह चुपके चुपके आपकी अल्लाह ताला से बातें होंगी, यकीन करें नमाज पढ़ने के बाद जब आप उठेंगी ना तो आपको ये नहीं लगेगा नमाज पढ़ी है, आपको लगेगा कि फोन कॉल डिस्कनेक्ट किया। अच्छा अल्लाह ताला ये बहुत ही शोर मचा रहे हैं सारे अंदर, अल्लाह ताला आपसे फिर बातें करेंगे। अच्छा अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मालिक की अजमत का एहसास, दोस्ती कीजिए उससे।